नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए कल बिहार और पश्चिम बंगाल जाएंगे। रेलवे दीपावली और छठ पूजा के दौरान बिहार के लिए 12,000 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और रूस के बीच चार वर्ष में वस्तुओं का व्यापार 5 गुना बढ़ा। इसराइल ने कहा, गाजा शहर पर कब्जे और नियंत्रण के लिए सैन्य कार्रवाई का पहला कदम उठाया गया। भारतीय पहलवान तपस्या ने बुल्गारिया में 20 वर्ष से कम आयु वर्ग की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और प्रथम खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव आज से श्रीनगर की डल झील में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी गंगा नदी पर औंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बढ़ेगा। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन वाले खंड का भी उद्घाटन करेंगे। इससे भीड़भाड़ और यात्रा के समय में कमी आएगी तथा यात्री और माल ढुलाई में सुधार होगा। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में बिहार के नेताओं के साथ चर्चा के बाद श्री वैष्णव ने ये घोषणा की।
जो दीपावली और छठ के आगामी दो बड़े त्योहार हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए ऐसी डिस्कशन में आया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि किस तरह से हमारे यात्रियों को रिटर्न जर्नी में सुविधा हो, तो इस चर्चा के बाद में ये तय हुआ 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी, जिससे कि यात्रियों को इन दो बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
रेल मंत्रालय ने न केवल नई रेलगाड़ियां चलाने बल्कि कई अन्य योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी काम किया है। एक रिपोर्ट।
सामान्य श्रेणी के यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली गया सहरसा अमृतसर छपरा दिल्ली और मुजफ्फरपुर हैदराबाद के लिए 4 नई अमृत भारत रेलगाड़ियां शुरू की जाएंगी। दिल्ली में बिहार के एनडीए नेताओं ने दीपावली और छठ पर्व के लिए रेलवे व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। 13 से 26 अक्टूबर तक यात्रा करने वाले और 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक वापसी यात्रा करने वाले यात्रियों को नई प्रायोगिक योजना के अंतर्गत कन्फर्म टिकट के साथ साथ वापसी किराए में 20% की छूट भी मिलेगी। समाचार कक्ष से अलका सिंह।
लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। श्री वैष्णव आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
मनी गेम्स के कारण ऐसे एक्सट्रीम केसेस कई सारे हुए हैं, जिसमें युवाओं ने ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा कमाया, कमाने के बाद में सुसाइड की तरफ आगे बढ़े। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो इसको पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा इश्यू माना है और डिसऑर्डर की तरह से उसको घोषित किया है। तो इस तरह की परिस्थितियों में जरूरी था कि एक ऐसा बिल लाया जाए जो कि समाज के लिए जो उपयोगी है उसको प्रमोट करे, एनकरेज करे, और जो समाज के लिए हानिकारक है उसको रोके।
महाराष्ट्र में नासिक और नागपुर के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव विश्लेषक संजय कुमार के नाम 2 मामले दर्ज कराए हैं। संजय पर लोकसभा और नवंबर में देवलाली तथा रामटेक विधानसभा चुनाव के बारे में गलत जानकारी से मतदाताओं को गुमराह करने के आरोप हैं। सीएसडीएस के संजय कुमार ने महाराष्ट्र में मतदान पर सवाल उठाए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में भारत रूस द्विपक्षीय वस्तु व्यापार में 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। ये 2021 में 13 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 68 अरब डॉलर हो गया है। डॉ. जयशंकर ने इस अवधि में व्यापार असंतुलन के करीब 9 गुना बढ़ने पर चिंता प्रकट की।
Over the last 4 years, bilateral trade in goods has increased from more fivefold, from $13 billion in 2021 to $68 billion in 2024-25, and it continues to grow. However, a major trade balance has accompanied the growth. It has increased from $6.6 billion to $58.9 billion, which is about 9 times. So we need to address that urgently.
विदेश मंत्री ने कल मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग आयोग की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक करेंगे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। इस बातचीत में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसमें आर्थिक और बहुध्रुवीय सहयोग पर जोर दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वित्तीय व्यवस्था के विकास पर विशेष रूप से बातचीत होगी। श्री जयशंकर और लावरोव एशिया प्रशांत में विकसित हो रहे रक्षा ढांचे, यूक्रेन में संघर्ष, अफगानिस्तान की स्थिति और फलिस्तीन इजराइल के बीच जारी संघर्ष सहित कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में भी विचार विमर्श होने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत रूस के बीच साझेदारी मजबूत हो रही है और सहयोग के नए क्षेत्रों तथा अवसरों की तलाश भी की जा रही है। मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच की बैठक में उन्होंने व्यवसायियों से अधिक व्यापार और अधिक निवेश करने तथा आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशने का आह्वान किया। भारत यूरेशियाई आर्थिक मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने, संपर्क में सुधार और व्यापार समझौतों पर चर्चा की जा रही है।
We want to send you all a clear message that an enduring strategic partnership must have a strong and sustainable economic component. Realizing that means moving on multiple fronts. We have today concluded the terms of reference for the India-Eurasian Economic Union FTA. That will surely make a difference when concluded. We spoke about motivating joint ventures in key areas.
रूस ने वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की सराहना की है और इसे विविध विदेश नीति के साथ विकसित हो रही आर्थिक शक्ति बताया है। भारत में रूस के राजदूत रोमन बाबुबुश्किन ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के परस्पर हित हैं और उन्होंने लगातार सहयोग के रास्ते तलाशे हैं। श्री बाबुबुश्किन ने कहा कि इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।
The relations are expanding. They are uninterrupted, the engagements, including the current visit of Honorable Minister Jayashankar and his engagements in Moscow and the coming CEO summit are setting the stage for the future visit of the President Putin to India by the end of this year.
इसराइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने और उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए योजनाबद्ध सैन्य कार्रवाई का पहला कदम उठाया है। सेना पहले से ही बाहरी इलाकों जीतून और जबालिया में बड़े हमले की तैयारी में लगी है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कॉर्ड्स ने कल इस योजना को मंजूरी दी। इस सप्ताह के अंत में इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट में इस योजना की समीक्षा की जाएगी। इसराइली रक्षा बल IDF के बयान में कहा गया है कि इस अभियान के लिए 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया जा रहा है।
इसराइल का लक्ष्य हमास के सैन्य ढांचे को गाजा की आबादी से अलग करके कमजोर और नष्ट करना है। हालांकि कई देशों ने इस हमले की आलोचना की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी दी है कि इससे आपदा और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने भी गाजा की स्थिति पर चिंता प्रकट की है। उसने चेतावनी दी है कि लड़ाई बढ़ने से स्थिति और खराब होगी तथा शेष 50 बंधकों की रिहाई में बाधा आएगी। समिति ने तत्काल युद्ध विराम करने और मानवीय सहायता बेहतर बनाने का अनुरोध किया है। इस बीच कतर और मिस्र ने 60 दिनों के युद्ध विराम और लगभग आधे बंधकों की रिहाई से संबंधित नए युद्ध विराम समझौते का प्रस्ताव रखा है। हमास इस योजना से सहमत है, लेकिन
सरकार ने कहा है कि लिपुलेख दर्रे के माध्यम से चीन के साथ सीमा व्यापार के बारे में भारत का रुख सुसंगत और स्पष्ट रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस संबंध में नेपाल के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। क्षेत्रीय दावों के संबंध में भारत का रुख यह है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
भारतीय पहलवान तपस्या ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नॉर्वे की फेलिसिटास डोमाजेवा को 5-2 से हराया। भारत की सृष्टि ने महिलाओं के 68 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम भार वर्ग और रीना ने 55 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पुरुषों की स्पर्धा में सुमित मलिक ने मंगलवार को 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। अब तक इस प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों ने 1 स्वर्ण और 2 रजत सहित 3 पदक जीते हैं। इस बीच जम्मू और कश्मीर की डल झील पर आज से पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो रहा है। भव्य उद्घाटन समारोह आज शाम 6 बजे होगा। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी शामिल होंगी। 3 दिवसीय इस आयोजन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से ज्यादा एथलीट नौकायन, कयाकिंग और कैनोइंग में 24 स्वर्ण पदकों के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। इस दौरान वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस और शिकारा बोट स्प्रिंट जैसी स्पर्धाओं का रोमांच भी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा 44 एथलीट भेज रहा है। अब बात हॉकी की। हॉकी इंडिया ने आगामी पुरुष एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। ये प्रतियोगिता 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में आयोजित की जाएगी। भारत पूल ए में जापान, चीन और कजाकिस्तान के साथ खेलेगा। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह एक बार फिर टीम की कमान संभालेंगे। टीम का उद्देश्य बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित होने वाले 2026 के FIH हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना है।
मौसम विभाग ने आज गुजरात में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। आज सौराष्ट्र और कच्छ में मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन तक महाराष्ट्र और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, कोंकण और गोवा में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। उधर तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेम जिले के भद्राचलम में गोदावरी नदी का जलस्तर 48 फीट को पार कर गया है, जिसके बाद देर रात दूसरी बार बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद फरहत। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए जाने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक की प्रतियां फाड़ी गई, हाथापाई की नौबत। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के शब्द प्रकाशित किए हैं। जनता तय करे पीएम, सीएम या मंत्री को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। जनसुनवाई में दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला, आरोपी गिरफ्तार। दैनिक जागरण सहित कई समाचार पत्रों की सुर्खी है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण, चीन और तुर्की सहित कई देश जद में। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पत्र लिखता है, एक साथ कई लक्ष्य भेदने में सक्षम। वायुसेना के लिए 97 तेजस जेट विमानों की खरीद को मंजूरी। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, भारतीय कंपनियों ने छूट बढ़ने के बाद फिर शुरू की रूस से तेल की खरीदारी। घरेलू रिफाइनरियों के खरीद बढ़ाने से चीन के लिए आपूर्ति में आ सकती है गिरावट। अमर उजाला की सुर्खी है, हीरे से बना सेंसर करेगा कैंसर की पहचान, ब्रिटेन की वार्विक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया तैयार। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, जीपीएस से घर आएगा डाकिया, यूपीआई से होगा भुगतान। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, पत्र लिखता है, 5,800 करोड़ की नई एडवांस्ड पोस्टल तकनीक शुरू।
धन्यवाद आकर्षिता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए कल बिहार और पश्चिम बंगाल जाएंगे। रेलवे दीपावली और छठ पूजा के दौरान बिहार के लिए 12,000 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और रूस के बीच 4 वर्ष में वस्तुओं का व्यापार 5 गुना बढ़ा। इसराइल ने कहा, गाजा शहर पर कब्जे और नियंत्रण के लिए सैन्य कार्रवाई का पहला कदम उठाया गया। और प्रथम खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव आज से श्रीनगर की डल झील में शुरू। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।